सुमित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संगीत की शुरुआत आपकी कैसे हुई। ये आपका खुद का फैसला था या आपके परिवार ने तय किया कि आप संगीत के क्षेत्र में आएंगी?
ये मेरी माँ का कहना है और पिताजी का कहना है। जब मैं 1.5 साल की उम्र की थी, तब इसको झूला कहते हैं ना, जो क्रेडल झूला कहते हैं ना, वही झूला में खड़ी हुई थी, मम्मी झूला रही थी और मम्मी ने एक धुन गाया, ऐसी एक धुन गाया। 1.5 साल की बच्ची थी, बात नहीं कर सकती, लेकिन वो धुन को एग्जैक्टली मैंने कॉपी किया। माँ को लगा कि मैं एक अच्छी गायिका बन सकती हूँ। सभी गाते थे, मेरे भाई बहन सभी गाते थे, मम्मी गाती थी। तो 4 साल की उम्र में मेरी कर्नाटक संगीत की शिक्षा और भक्ति संगीत की दोनों माताजी ने शुरू करवा दिया। फिर उसके बाद संगीत विद्वान श्री जानकी रामन, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ये मेरी संगीत की यात्रा कैसी शुरू हुई, ऐसी शुरू हुई।
वाह, ये तो रही आपके बचपन की बात, आगे संगीत का सफर कैसे जारी रहा?
उस जमाने में तिरुपति विमेंस कॉलेज में मेट्रिकुलेशन के बाद, उस जमाने में क्लास 10 मेट्रिकुलेशन था, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करके 1 साल था। उसके 1 साल करने के बाद जो भी अपना जॉइंट एंट्रेंस करके मेडिसिन में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आप, या ये ग्रेजुएशन करेंगे, ऐसे कुछ था। वो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में सब्जेक्ट्स लेने के बाद जब आई, तब मेरे काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स थे बचपन के, वो लोग सब डॉक्टर बनना चाहते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया। मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ म्यूजिक लिया। तो घर में डांट पड़ी, फिर पापा ने कहा कि ऐसी गलती क्यों किया, खाली साइंस सब्जेक्ट्स लेना था आपको। मैंने कहा कि नहीं पापा, वो लोग सब ले रहे थे तो मैं भी लिया, और उसके साथ संगीत को तो मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसके साथ मैंने कर्नाटक म्यूजिक के लेक्चरर थी उधर, कर्नाटक म्यूजिक का जैसा सीखना है वो भी सीखती थी उधर। तब उसी वक्त जिस दिन मेरे को सीट मिला, उसी दिन पिताजी का ऑर्डर आया, डेपुटेशन उनको जाना है नेपाल, काठमांडू जाना है, पूरा परिवार को लेके वो जाएंगे जरूर। तो पिताजी ने, पिताजी बहुत खुश थे कि नेपाल में रहेंगे 3-4 साल, लेकिन मैं बहुत उदास थी, मैं रोने लगी। तो पिताजी ने मेरे को तसल्ली दिया, एक बात कह के, देखो बेटा आप एक अच्छी गायिका बनोगे, इसलिए ये सब हो रहा है, कि ऐसा करो आपको मैं शांतिनिकेतन ले जाऊंगा और उधर आप पढ़िएगा और उधर आप संगीत सीखिएगा।
तो आपके पिता ने आपको सिर्फ दिलासा दिया या आपको वहाँ लेकर भी गए?
सीट सब फिलअप हो गया था, बहुत देर हुई थी, हम लोग जुलाई में गए थे, जून में सब सीट्स फिलअप हो जाता है, क्या करें। फिर हम किसी ने गाइड किया, आप वाइस चांसलर से मिलो। तो हम वाइस चांसलर से मिले, तो उन्होंने कहा कि घर आ जाओ। घर जाए तो उन्होंने कहा कि गाना सुनाओ। मैंने एक जयदेव की अष्टपति सुनाई उनको, बहुत अच्छा लगा। उनको कहा कि बेटा रूल्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप जरूर संगीत सीखोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपकी उम्र भी बहुत कम है, तो ज़रूर आप हिंदुस्तान माने जो भी संगीत आप सीखना चाहेंगे सीखोगे, लेकिन अगर इधर सीट नहीं हो तो दूसरा क्या चॉइस है। तो मैंने कहा देन फिर मैं फिलॉसफी लेके पढ़ूंगी। 1 साल के बाद उधर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की कॉन्फ्रेंस, जिसमें सलामत अली खान साहब और नज़ाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर्स थे उस ज़माने के, राग कलावती मैं सीखी थी बचपन में, मतलब छोटी उम्र में कर्नाटक संगीत में, वही राग कलावती उन लोगों ने 1 घंटा दोनों ने गाया, दिल मेरे दिल को छू लिया। और मैंने सोचा अगर ये हिंदुस्तानी संगीत है तो मुझे सीखना है हिंदुस्तानी संगीत। और फिर दूसरे दिन मेरे जो गुरुजी थे पंडित ए कानन और विदुषी मालवीय के कानन, उन दोनों का गायन था, बहुत सुंदर लगा उन दोनों का गायन भी। तो फिर पाकिस्तान तो नहीं जा सकूंगी, तो उन दोनों से मैं मिली, पंडित कानन जी से और विदुषी मालविका कानन जी से। मैंने कहा मुझे हिंदुस्तानी संगीत बहुत अच्छा लगता है, मैं सीखूंगी आपके आप लोगों के पास। मैंने कहा कि ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद हम सिखाएंगे आपको, दोनों ने वादा किया।
फिर ये जो वादा था ये कैसे पूरा हुआ, ग्रेजुएशन के बाद आपकी मुलाकात हुई उनसे?
शांति देव घोष करके एक बहुत बड़े कलाकार थे रविंद्र संगीत के उधर, वो मुझे बहुत ये करते थे, शांतिदा और कन्या बनर्जी, ये दोनों टैगोर से सीखा हुआ है, ये लोग टैगोर के डिसाइपल्स थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के। उन दोनों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छा लगता था, कि घर बुला के मिठाई खिला के मेरे को गाना सिखाते थे रविंद्र संगीत। और टैगोर म्यूजिक को एक अलग सब्जेक्ट है। उनको जब मैंने बोला कि ऐसे मैं मालविका जी के पास और कान्हा जी के पास सीखने जाना है, तो उन्होंने कहा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ करके एक बहुत सुंदर सा चिट्ठी दिया। वो चिट्ठी लेके मुझे जाना था। मेरे हस्बैंड का पॉलिसी था, वो सोचते थे छोटी लड़की है, शादी होने के बाद अच्छी साड़ी देंगे, अच्छे ऑर्नामेंट्स देंगे, माँ बन जाएगी, फिर भूल जाएगी। बाद में अगर शौक से अगर सीखेगी तो देखा जाएगा। तो ऐसे ले तो ले गए, ज़बरदस्ती ले गए मेरे को। वो चिट्ठी मैंने दिखाया तो वो लोग बहुत खुश हो गए। तो ठीक है, लेकिन आप कितना दिन सीखोगी? खाली एक डेढ़ महीना सीखा था, फिर उसके बाद बेटा हो गया। बेटा का 6 महीने जब हुआ तब से मैं सीख रही। कभी मैंने टाइम नहीं देखा, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी दोपहर, जब भी टाइम मिलता था मैं रियाज करती थी। तो इसलिए मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, मेरे हस्बैंड को।
ये तो थी संगीत सीखने की शुरुआत। पहला मौका कब मिला आपको स्टेज पर परफॉर्म करने का?
बीच में मुझे इनविटेशन आया तिरुपति से, ब्रह्मोत्सव हुआ करता था, ब्रह्मोत्सव में गाने के लिए मेरी पहली। तब मैं सीख रही थी, 5-6 साल हुआ सीखने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि 12 साल पहले परफॉर्म नहीं करने का। गुरुजी से पूछा, दीदी से भी पूछा, दीदी से पूछा कि ऐसा ऑफर आया है कि तिरुपति में ब्रह्मोत्सव में, उधर ठीक है, तुम तो पूरा क्लासिकल कॉन्सर्ट नहीं है, थोड़ा सा हिंदुस्तानी गाओगे और भजन गाओगे, तुम गाओ। थोड़ा सा हिंदुस्तानी गाया, फिर उसके बाद भजन गाया। संतनमाचारी का जो भजन मैं गाती हूँ उनका हिंदुस्तानी स्टाइल में गाती हूँ, तो इसलिए उनको बहुत पसंद आया। पहले मैं हिंदुस्तानी गाई थी, राग यमन कल्याण थोड़ा सा 10 मिनट गाया, फिर उसके बाद अन्नमाचार्य जी के गाया, फिर मुझे याद है अभी भी मीरा जी का, सुरदास जी का भजन गाया था। वो पहले ही कॉन्सर्ट में ही मुझे गोल्ड मेडल मिला था।
आपने सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने काम किया है, और उसी का हिस्सा है एक प्रोजेक्ट गोंडवाना डॉन, उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
देखिए, गोंडवाना डॉन ये एक प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2011 में हमने शुरू किया। ये मेरे छोटा बेटा जितेंद्र गुहा, उसकी सहयोगिता से हुई है। रॉबिन होगात एक डबल ग्रैमी अवार्ड विनर है, उनसे कोलैबोरेशन मैंने किया, उनको बुलाया इंडिया। वो आए थे स्लम एरियाज के जो बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज के, बहुत टैलेंटेड 8 बच्चे को लाए, 8 बच्चों के साथ 2 टीचर्स भी थे, मतलब 11 लोग करीब 5 वीक्स रहे दिल्ली में। और रोज हम मिलते थे, भले आप अलग देश के हो लेकिन इंसानियत जो है, इंसान की जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, भावना जो है एक ही है, वो भावना लेके हमने शुरू किया था। और महात्मा गांधी जी की जो आइडियल्स है और नेल्सन मंडेला जी की जो आइडियल्स है, उन दोनों को मिला के फिर ह्यूमन इमोशंस, मनुष्य का जो भाव है वो एक ही है, ये सब लेके मैंने कुछ कबीर जी का भजन लिया, कुछ राग लिया, इसमें ये है फ्यूजन दोनों का, अफ्रीकन गॉस्पल म्यूजिक, साउथ अफ्रीकन गॉस्पल म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक, ये सारी भावनाओं को लेके हम बनाए थे एक खूबसूरत प्रोजेक्ट गोंडवाना डॉन।
इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है आपका ओमकारा, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
रूपम शर्मा बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऑल्सो फिल्म डायरेक्टर है, वो कैलिफोर्निया में रहता है। उनका एक प्रोजेक्ट है ओंकारा करके, ये ओंकारा है, इट्स रिलेटेड टू चक्रा मेडिटेशन। म्यूजिक और चक्रा मेडिटेशन का क्या संबंध है? उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च करके एक सीडी बनाया ओंकारा करके, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियंस भी है उसमें। वोकल्स के लिए मेरे को उन्होंने लिया था वो सीडी भी ग्रैमीज में आ गए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग इन वन ऑफ द बेस्ट टेन दसों में एक है करके रेडियो में भी बजता है अभी ऑल ओवर। इनको हम, मैं और रूपम, आगे ले जाना चाहते हैं।
आप किराना घराना से जुड़ी हैं, अगर किराना घराना की खासियत की बात की जाए तो क्या खास है इस घराने में और घरानों से कैसे अलग है?
किराना घराना में कि स्वरों का बहुत ध्यान देते हैं, स्वर शुद्धता के लिए। ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे घराने में स्वरों को ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर स्वरों की स्टेबिलिटी के ऊपर, स्वरों के कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा देते हैं, विस्तार के ऊपर। और सब कुछ जैसा मैंने कहा कि एक किराना एक गांव का नाम है, वो किराने में इससे म्यूजिशियंस जो आए हैं उनको किराना कहते हैं, ऐसे भिंडी बाजार, वो ऐसे कई कई नाम हैं। तो किराना घराना का मेरे ख्याल से ये जो स्टेबिलिटी ऑफ द स्वरास, जो स्वर की ठहराव को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं।
सुमित्रा जी कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत एक साधना है, बहुत सब्र चाहिए इसे सीखने के लिए। अगर आजकल की पीढ़ी की बात की जाए, आज की जनरेशन की बात की जाए, तो क्या आप वो शिद्दत और सब्र पाती हैं आज के युवाओं में?
कुछ लोगों में है, तभी कुछ लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं, कुछ यंग लड़कियां और लड़के दोनों। और कुछ लोग सोचते हैं कि जैसा इंस्टेंट कॉफ़ी है, पानी डाला ये डाला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए लगन, मेहनत, अपनी विद्या के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु की प्रति श्रद्धा, ये सब होना चाहिए, तभी हो पाता है। ऐसे भी शिष्य मेरे पास आते हैं तो क्रैश कोर्स करने के लिए, मैं भारत में तो नहीं देती हूँ क्रैश कोर्स, लेकिन बाहर देती हूँ। ये इसका मतलब ये है, बाहर में क्यों देती हूँ क्रैश कोर्स, ताकि वो लोग हमारे संगीत को समझ सके, हमारी संगीत की पॉपुलैरिटी बढ़े, इस मकसद से मैं देती हूँ। लेकिन इधर मैं नहीं देती हूँ, इधर मैं अगर सिखाना हो तो अच्छी तरह सिखाती हूँ।